करीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक यू 5196220660 quicktrucklube.com।
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। पैराडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर। वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसिसागा 4167579999 स्कारब्रो।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
चांदनी
बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस, लोकेशंस, साउंड सिस्टम, इनोवेशंस। चांदनी बैंक्वेट हॉल,
30 years ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन,
सारे पैकेज का नाम चांदनी बैंक्वेट हॉल। आज ही कॉल कीजिए 4372188734 chandnihalls.ca।
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours
905-272-2300 स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काकदा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000 लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दी, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसुकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 4166710577।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 4167928792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ 4167928792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 4167928792।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त।
वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने और देखने वालों को। मेरी तरफ से जिशान लेकर आ गए हैं क्रिकेट स्पेशल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम एवरीडे 7 PM रेडियो
मंडे टू फ्राइडे
रेडियो 770 AM और ईओएस टीवी पर लाइव। मैं जिशान, मेरे साथ होती शहरी शहरी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है जिशान? ठीक है,
आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं?
अस्सलाम वालेकुम जिशान, शाहजी कैसे हैं? तमाम सामईन और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम।
हम सबके सुनने वालों के चेहरे उतरे हुए?
नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। कुछ नया, कुछ नया हुआ क्या?
अच्छा नया हुआ है, बहुत कुछ हुआ है नया। अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्राइडे को जो दो मैचेस हुए थे, तो मैं उसका रिजल्ट बता दूं। जब हम जा रहे थे तो श्रीलंका बांग्लादेश के दरमियान मैच हो रहा था, बांग्लादेश ने ये मैच जो है 2 विकेटों से जीत लिया है। और फिर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच जा रहा था फ्राइडे को, और अफगानिस्तान ने आउटक्लास कर दिया है सारे डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड को। और ये मैच 84 रन से जीत लिया है। सैटरडे को 3 मैचेस हुए, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीता है 4 विकेटों से। ऑस्ट्रेलिया ने हराया इंग्लैंड को 36 रन से, और वेस्ट इंडीज ने ऑल आउट कर दिया युगांडा को सिर्फ 39 रन पे, द लोवेस्ट T20 वर्ल्ड कप मैच में। और ये मैच वेस्ट इंडीज ने बहुत बड़े मार्जिन से 134 रन से जीत लिया। संडे, कल संडे था, कल 2 मैचेस हुए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने ये मैच जीत लिया 6 रन से। और स्कॉटलैंड ने ओमान को हराया, और स्कॉटलैंड ने ये मैच जीता 7 विकेटों से। और आज एक मैच था, अब तक एक हफ्ता हो चुका है
जी,
8 दिन में 8 थ्रिलर्स हमने देखे।
यस,
और 200 पर ओवर।
यस,
क्या ही बात है इस वर्ल्ड।
क्या बात है,
आज भी थ्रिलर मैच हुआ। 1-2 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, और बांग्लादेश ना बना सका, वही बात जीते थे।
बहुत अनलकी रहे, बहुत अनलकी
रहे। सिर्फ 114 रन का टारगेट में था बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए, लेकिन कहते हैं ना जो पाकिस्तान के साथ हुआ वही आज बांग्लादेश के साथ भी हुआ। तो ये मैच साउथ अफ्रीका ने 4 रन से जीत लिए। कल है ट्यूसडे का दिन, और कल बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और कल भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। जो हमारा टीवी देख रहे हैं उसमें हम पिक्चर्स दे सकते हैं कि कल पहला मैच होगा पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान, दूसरा मैच होगा श्रीलंका और नेपाल के दरमियान, और तीसरा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के दरमियान। तो ये कल मैच 3 मैचेस खेले जाएंगे ट्यूसडे जून 11 को। अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो ग्रुप ए में जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए जो है टॉप पर है अभी 4-4 पॉइंट्स के साथ। ग्रुप बी में स्कॉटलैंड और 5 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पे है। ग्रुप सी में अफगानिस्तान नंबर,
ग्रुप बी की मैं बात आपको यहाँ रोकूंगा, यहाँ देखें इंग्लैंड कहाँ है।
जी जी, आप उस पर भी आता हूँ, अभी आते हैं उस पर भी।
मुझे लग रहा है कि आउट हो जाएगा, मेरी ऐसी लगता है कि इंग्लैंड बाहर हो जाएगा इस बार।
जी जी, अभी इंग्लैंड पे डिस्कस करते हैं। अफगानिस्तान के 4 हैं, और ग्रुप सी में भी वेस्ट इंडीज के 4 पॉइंट्स के साथ यानी कि टेबल पर टॉप है। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है, और बांग्लादेश 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है।
اچھا گروپ ڈی میں جو نا ساؤتھ افریقہ،
ہاں
اگر میں کہوں کہ ساؤتھ افریقہ سپر ایٹ کوالیفائی کرنے کے لیے پہلی ٹیم ہو گئی تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو میں
صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ چھ پوائنٹس ان کے آلریڈی ہو گئے، تینوں تین میچ کھیلے ہیں،
کافی میچز باقی ہیں کیونکہ نیپال نے بھی دو میچز کھیلنے ہیں
اور ان آفیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کوالیفائی کر گئے.
گروپ ڈی سے ساؤتھ افریقہ ایک ٹیم جو ہے سپر ایٹ میں کوالیفائی کر رہی نظر آ رہی. اچھا ان چار ٹیموں میں پاکستان، انگلینڈ، سری لنکا، نیوزی لینڈ. نیوزی لینڈ کو میں اس لیے کہوں گا کہ نیوزی لینڈ صرف ایک میچ کھیلا ہے اور وہ ایک ہی میچ
بالکل ایسی،
لیکن پاکستان، سری لنکا، انگلینڈ یہ تین ٹیمیں ایسی ہیں کہ یعنی کہ کہوں گا کہ وہ ریلائی کر رہی ہیں دوسری ٹیم.
لیکن انگلینڈ نے پھر بھی ایک جیتا ہے تو یہ بلکہ ایک بارش کا ہو گیا تھا انگلینڈ کے پاس، ایک پوائنٹ ہے بارش کا، وہ پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج نہیں ہے.
جی جی اسکاٹ لینڈ کے خلاف جو بارش ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک یہ مہنگا پڑ جائے گا.
ٹھیک ہے اگر ہم گروپ اے سے شروع کرتے ہیں، شاید جی اب ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں گروپ اے میں، وہ بھی ہیں شاید. اچھا گروپ اے میں اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ اگر ہم پاکستان کی صرف بات کریں تو اب ہمارا میچ جیسے آپ نے بتایا کہ کینیڈا کے ساتھ ہے نیکسٹ، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم رہ جائیں گے آئرلینڈ کے ساتھ،
صحیح
ایسے ہی رہیں گے.
جی جی
اگر ہم دونوں میچ جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چلے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مارجن کے ساتھ جیت جاتے ہیں تو ہمارا جو مقابلہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یو ایس کے ساتھ ٹکرا ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت یو ایس جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو رن فور پوائنٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا رن ریٹ بھی پازیٹو ہے، یہ بہت ڈینجر جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے ہو جائے گا.
جی جی
کیونکہ پاکستان اگر جیتتا ہے تو صرف جیتنا نہیں ہے، بہت مارجن کے ساتھ جیتنا ہے تاکہ آپ نے پلس رن ریٹ اس کے ساتھ جانا ہے،
ٹھیک
ہے نا، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے جناب. میرا تو ابھی کوئی کامنٹس نہیں ہے، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو کرتے رہتے ہیں.
صحیح، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 416-620-1777 ہے. شہزاد جی، انڈیا پاکستان کا میچ ہوا، آپ نے دیکھا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟
کیا کہیں گے، ہم نے تو پریڈکٹ کیا تھا پہلے ہی.
اچھا
ہاں، کیا کہیں گے؟
میں نے
جو پریڈکشنز کی آپ میری دیکھتے جاؤ ساری.
آپ نے پریڈکٹ صحیح کیا غلط کیا، لیکن آپ اپنا دیکھیں کہ پاکستان نے کہاں غلطی کری. انڈیا
ساری غلطیاں ہی غلطیاں تھیں ان کی، ساری غلطیاں ہی غلطیاں تھیں. کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ کھڑے ہو کے کھیل نہیں رہا تھا، ہر بندہ جو ہے وہ شاٹیں مارنے کی کوشش کر رہا تھا. وہی جیسے سنیل گواسکر کہہ رہا تھا ٹیم انڈیا ٹیم کے بارے میں کہ ہر شاٹ جو ہے وہ مارنے والی نہیں ہوتی ہے. اتنی آپ نے بولرز نے جو جتنی اچھی وہ کوشش کی اس کے اوپر پانی پھیر دیا آپ نے، بیڑا گرک کر دیا آپ کی بیٹنگ نے.
جی جی
جیسے کہ ہم ہی اپنا جو کرکٹ کا پروگرام چلا رہے ہیں کچھ لوگ اس پہ پانی پھیرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس کو اسی طرح وہاں پہ جو ہے پاکستان
کون لوگ ہیں جو پانی پھیر رہے ہیں،
بس ایسے
کون لوگ ہیں، آپ کے شو میں پانی پھیر رہے ہیں.
بالکل بالکل بیڑا گرک کر رہے ہیں اس کے اوپر.
دیکھیں ریکوائرڈ
تو یہ جو ہے وہ 120 ایک اتنی ایکسپیرینس. آپ دیکھیں کہ ہم تو کیا تعریف کریں گے اس بولنگ اٹیک کی، اس بولنگ اٹیک کی سنیل گواسکر جیسا آدمی تعریف کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تم لوگ کیا سمجھ رہے تھے یہ پاکستان کی بولنگ اٹیک کو، یہ تم لوگ جو ہے وہ ایک آئرلینڈ کی ٹیم سمجھ رہے تھے، یہ تو اتنی ایکسپیرینس ٹیم تھی، اس کو تم لوگ جو ہے کیسے کھیلا ہے تم لوگوں نے، کتنی اس نے آج بیٹنگ دی ہے انڈین ٹیم کو. تو اگر بولرز نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو تم لوگ اندھے ہوئے ہوئے ہو بھائی، جیسے تم بیٹسمین ہو کس طرح کی تم لوگ شاٹس مار رہے ہو. اور وہ بالکل صحیح کہا وسیم اکرم نے، سلمان بٹ نے، حفیظ نے، شاہد افریدی نے کہ 10-10 سال سے تم لوگ کھیل رہے ہو، تم لوگ کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سی شاٹ ہم نے کیسے کھیلنی ہے.
بالکل.
اور اس میں جو یہ جو میں تو اس وقت بالکل میں کہنا چاہ رہی ہوں پی سی بی کے جو چیئرمین محسن نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب یہ ہمارے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، خدا کے لیے بہت بڑے بندے ہو گئے آپ، پی سی بی کا پیچھا چھوڑ دو آپ، نہیں آپ کو چلانا چاہیے، آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. اتنی ڈسمل جو یہ اس وقت ٹیم کی جو یہ پرفارمنس آئی ہے یہ صرف آپ کی وجہ سے آئی ہے. آپ ان کو ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں کاکول کے اوپر جا رہے ہیں، کاکول کے اوپر یہ ملٹری کے بندے ہیں، یہ کرکٹرز ہیں، یہ کرکٹرز ہیں، ان کو کرکٹ کھلاؤ اور آپ چھوڑو اس آرگنائزیشن کا پیچھا اور کسی کرکٹر کو یہ آرگنائزیشن آپ چلانے دو. ہر ٹیم کی ہر چیز کی، پہلے آپ نے ہاکی کا بیڑا غرق کیا آپ لوگوں نے، اب آپ کرکٹ جو ایک جو چیز جو خوشی دیتی تھی اس ٹیم کی اس قوم کو اس کا بھی آپ لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتا بھی ہے بلے کا پٹا پاسا کون سا ہوتا ہے؟ چھوڑو اس کا کسی کو کرکٹر کو آنے دو، ہر کسی کے اوپر رہتا ہے او جی وسیم اکرم تو ایسا ہے، او جی حفیظ ایسا ہے، ایٹ لیسٹ کرکٹر تو ہیں، ان کو گیم کا پتا تو ہے، ان کو پتا تو ہے کہ ہم کو کیسے چلانا ہے. آنے دو کسی پروفیشنل کو، جیسے رمیز راجا پہلے چلا رہا تھا، پاکستان کی اس طرح کی پرفارمنس نہیں تھی. دبئی کے اندر جس وقت میچ ہوا انہوں نے انڈیا کو بھی ہرایا، افغانستان کو ہرایا، انہوں نے نیوزی لینڈ کو ہرایا، इतनी अच्छी टीम थी, ठीक है खेल के हारे थे, अगर हारे थे तो इस वक्त तो उनका लड़कों का लग ही नहीं रहा, पता नहीं आपने किया क्या, शायद खून निकाल लिया उनका काबून के अंदर कि जिन जो उनकी परफॉर्मेंस लड़कों, मैंने पहले दिन से कहा था ये वो टीम है ही नहीं जो कि मैच जीतने के लिए आई है या जो गेम भी खेलने के लिए आई हुई है।
वसीम अकरम काफी भड़के होते हैं और उसी बात को मैं बढ़ाता हूं, उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अंडर परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म नहीं करते, सोचते यही है कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोचेस को निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब बारी है कोचेस को रखें, लड़कों को निकाल दें। बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट, वैलिड पॉइंट दिया, ताकि जो आने वाले
लड़कों के साथ साथ सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को निकालो,
आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो एक खेप हम लोग तैयार कर रहे हैं उनके लिए जो है सबक आजमा। अच्छा क्विकली आमिर आप भी बताएं कल के मैच के बारे में।
बहुत सारी बातें हो रही है, लोग गुस्सा भी है, यहाँ का मीडिया भी जो है वो गुस्सा कर रहा है प्लेयर्स के ऊपर, पाकिस्तान का भी कर रहा है। मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ देखो, ये क्या नई चीज हुई है, ये वसीम अकरम, वकार यूनस, मैं बहुत सारे और एक्स क्रिकेटर्स को कह रहा हूँ, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो इस पर तजिया कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, यहाँ टोरंटो में भी कर रहे हैं। मुझे बताएं कि इससे पहले क्या जो वसीम अकरम खेलते थे या वकार यूनस या शोएब मलिक या जितने भी हैं, तो आप इंडिया से क्या जीत जाते थे?
बिल्कुल।
आप उस वक्त क्या करते थे मुझे ये बताएं।
इस तरह नहीं हारते थे, इस तरह नहीं हारते थे।
देखिए मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ।
एक गेम, एक चीज होती है खेल के हारना, एक होती है बिल्कुल ही ना खेलना।
शाजिया जी, दिस इज द रिकॉर्ड के हमने इंडिया की पूरी टीम को आउट करके 120-119 पर रिस्ट्रिक्ट किया, इससे पहले कभी किया
नहीं।
आप क्यों नहीं समझ, हर चीज नेगेटिव नहीं होती,
क्योंकि ये पिच ही ऐसी है, इस पे ज्यादा स्कोर हो ही नहीं रहा है, इस पिच पे ज्यादा स्कोर हो ही नहीं रहा ना।
मैंने 99 पे पाकिस्तान ने जो है, देखें अभी भी, और अगेन मेरा ये भी है, बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, देखिए हमें पॉजिटिव देखना पड़ेगा। इंडिया के साथ हमारे मैच ऐसे ही होते हैं, खासकर वर्ल्ड कप में। आप तो ज्यादा मुझसे स्पोर्ट्स को समझते हैं, मैं तो फिर भी जरा सा फॉलो करता हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है आप लोगों को पता है सब, इंडिया से हमारा क्या रिकॉर्ड वर्ल्ड कप का, क्यों इतना जो है, और ये वसीम अकरम हो जाए या जितने प्लेयर ले
लेंगे,
तो क्या ये पाकिस्तान टीम में नहीं थे, खेलते थे वर्ल्ड क्लास बॉलर, 502 टेस्ट विकेट वसीम अकरम,
अच्छा चलो क्या करते थे, इंडिया इंडिया से हारे ना, अच्छा यूएसए से कैसे हारे हैं ये, इतनी अच्छी टीम यूएसए।
मुझे एक बात बताइए ना कि हम आइलैंड से नहीं हारे,
जी जी,
तो
हम अफगानिस्तान से नहीं हारे, हार जाते हैं भाई,
जी जी,
इसमें
इस तरह से हारते हैं,
पाकिस्तान टीम का ऐसे ही रहता है,
इतने बुरे तरीके से
शाजी जी, इससे बुरा हारे हैं, अगर मैं स्टैट्स निकालें पाकिस्तान टीम इससे ज्यादा बुरा खेली है, हमें इतनी तकलीफ है ना, हमें पता है, लेकिन क्या है कि ऐसे ही खेलते हैं।
अच्छा पाकिस्तान देखे मोहम्मद,
चलो
खेलते ही ऐसे हैं,
आगे दो गेम जीत जाएंगे।
और फिर दूसरी बात यहाँ खत्म करता हूँ, फिर हम लहरे हमारे साथ बाजवा साहब भी होंगे। अच्छा मेरे इस पर भी एग्री नहीं करता कि जी जो क्रिकेटर होगा वो पीसीबी का चेयरमैन हो, आई एम नॉट एग्री, मतलब मैं इस पर सोल्ड नहीं हूँ, मैं भी गलत हूँ, लोग इसको एक्सेप्ट करें ना करें। मैनेजर जो होता है ना, जो पोजिशन होता है, जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा क्रिकेटर जो है वो अच्छा पीसीबी का चेयरमैन भी हो। इस फिलॉसफी को, इस साइंस को मैं नहीं मानता।
सही,
इंडिया के जो खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो क्या बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हैं? कौन है वो?
पहले सौरव गांगुली
था, अभी कौन है? अभी कौन है जो इंडिया को आज लेके यहाँ पहुंच गया?
जी जी,
कौन है?
नहीं
क्रिकेटर है वो,
नहीं
उस पर तो कोई गालियां नहीं देता।
नहीं नहीं, चेयरमैन की आप बात ना करें, जो उनकी जो कोर कमेटी जो चलाते हैं वो सारे,
तो हमारी भी जो कोर कमेटी है नीचे क्रिकेटर ही है सारे।
जी जी,
आप क्यों नहीं समझ रहे?
जी जी,
नहीं मैं गलत कह रहा हूँ?
हाँ।
नहीं अब आप नहीं, हाँ ना नहीं, आप बताएं गलत कह रहा हूँ?
नहीं नहीं नहीं,
क्रिकेटर नहीं है?
नहीं क्रिकेटर्स हैं,
तो खत्म हो गई। तो आप पीसीबी भी चेयरमैन को नहीं, क्रिकेटर हो क्रिकेटर हो, ये फिलॉसफी गलत है। यू नीड अ गुड मैनेजर,
तो ये मैनेजर गुड है,
वो बात हो सकती है कि बुरा है कि गलत है, लेकिन जो एक ये फिलॉसफी है ना कि नहीं यार एक रमीज राजा जो है वो आ जाए या जावेद मेदाद आ जाए या इमरान खान जैसा बंदा को आ जाए, भाई इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम उस साइकिल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है।
देखें कल मैं आपकी बात को बताता हूँ, 10 ओवर के बाद पाकिस्तान ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई,
वही तो बहुत
रोटेट करने की, जो
रना बॉल नहीं हुआ है, रना बॉल नहीं हुआ है,
जो यानी के एक्सपर्ट है मोहम्मद रिजवान स्ट्राइक रेट को रोटेट करने में, उन्होंने जो है अपनी बॉल गंवा दी।
वही तो सलमान ने कहा है,
बोला कि पहली बॉल है, आप उसको किस तरीके से खेल रहे हो?
सलमान ने यही तो कहा है कि उसको एक काम के लिए भेजा,
प्लेयर है ना वो जो तनकीद करे, मेरा जो प्लेयर तनकीद कर रहे हैं ना वो भी यही करते रहे पहले, उन्होंने भी अच्छा नहीं खेला।
अच्छा शैल जी, इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर बताएं हमारे साथ गेस्ट कौन है?
अच्छा जी,
हमारे
ये जो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है इसको स्पॉन्सर किया है सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, और आपको पता ही है कि दे आर ह्यूज क्रिकेट एंथुजियास्ट, तो वो जो है जून में बाइक मंथ भी बना रहे हैं और उन्होंने इसको हमें स्पॉन्सर भी किया है हमारे इस क्रिकेट के सेगमेंट को। आपको उनकी ज्यादा अगर सर्विसेज देखनी है तो brampton.ca पे जाएं। इसके अलावा नासिर शाह साहब, आपको पता ही है मॉर्गेजेस एंड लोन्स देते हैं वो, तो नासिर शाह साहब जो हैं उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6477419000। ही इज ऑल्सो वन ऑफ अवर प्राउड स्पॉन्सर्स ऑफ क्रिकेट का जो ये हमारा सेगमेंट है। इसके साथ साथ हमारे साथ गोंदर ब्रदर्स जो हैं वो भी हमको स्पॉन्सर कर रहे हैं और गोंदर ब्रदर्स की भी हम आपको जल्दी डिटेल्स देंगे। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि वो भी अब हमारे साथ इस क्रिकेट सेगमेंट में शामिल हो गए हैं। थैंक यू।
सही, अच्छा लेते हैं दो कमर्शियल ब्रेक और फिर जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेराइटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकवेल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 9056075000 905-607-5000।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज नासिर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल मोटल गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें 6477419000 6477419000।
हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि हमने आपको बताया था जी, हमारे साथ आज फिर से होंगे क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट रिशपाल बाजवा साहब, वो हमारे साथ हैं एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल कि आज उन्होंने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो इसलिए भी हमारे साथ आज खुशी खुशी आए हैं, लास्ट टाइम तो थोड़े उदास थे कि उनकी टीम जीत गई है, कनाडा की टीम जीती है, तो हम उसके ऊपर भी बात करते हैं और जो दूसरे मैचेस हैं उन पर भी बात करते हैं। हेलो जी बाजवा साहब, कैसे हो आप? थैंक यू सर, थैंक
यू।
हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए सर जरा टीम कनाडा की वैसे सक्सेस के बारे में पहले बताइए आप थोड़ा, फिर हम आगे चलते हैं।
टीम कनाडा, हम सोच रहे थे कि हम पहली गेम जीतेंगे बट और आज ये उस पहली गेम हारने का दुख हमें ना ज्यादा हुआ जब हमने दूसरी गेम जीत ली, क्योंकि यार इस समय हम सुपर एट की सोच रहे होते तो इतना ज्यादा है कि बताने के बॉयज प्लेड वेल। मेरे ख्याल से जो पहली गेम थी उसकी जो गलतियां थी उससे सीखे प्रेशर को जो है, और एक पहली गेम जो होती है वर्ल्ड कप में सब पहली बार ही खेल रहे हैं
जी जी।
तो ऐसी चीज का एक्सपीरियंस जो था वो थोड़ा सा टफ होता है प्लेयर्स के लिए। सो पहली गेम का जो एक्सपोजर और जो एक्सपीरियंस था उसको कैपिटलाइज किया सेकंड गेम में, एंड आई थिंक क्लिनिकल गेम खेली उस पिच के हिसाब से। मेरे ख्याल से इस समय 137 हमने मारे थे, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से इस समय लग रहा है कि वो तो बहुत बड़ा स्कोर मार दिए थे हमने कि भाई अब इंडिया पाकिस्तान की और आज बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की गेम देख के सोचा है कि हमारे बैट्समैन तो बहुत अच्छा खेले उस दिन। सो नो, वेरी हैप्पी विद द बॉयज एंड होपफुली दे हैव अ वेरी पॉजिटिव गेम टुमारो आल्सो।
कल का जी मैच, हम कल ही मैच की तरफ आ रहे थे, अब कल पाकिस्तान के साथ है, क्या लग रहा है आपको? फिर से 194 बनाएंगे या क्या जीतेंगे या हराएंगे, बैच करेंगे, क्या करेंगे?
न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर 190 अगर किसी टीम ने मार लिया है तो वो तो विनिंग टोटल है जी। उसके बाद आप पूरे वर्ल्ड की टीम इकट्ठी कर दो, वो भी नहीं 194 इस समय मार पाएगी।
हाँ जी,
मेरे ख्याल से
क्या ख्याल है, क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे, 125-130 ऐसा कुछ?
क्या विनिंग स्कोर होना चाहिए?
आई थिंक 125-130 इस समय उस पिच के ऊपर जो है अच्छा टोटल जो डिफेंड किया जा रहा है, क्योंकि एक ना इस पिच के ऊपर जो स्ट्रेटजी है खेलने की टीमों को अभी तक धीरे धीरे अब समझ आ जाएगी। अब मेरे ख्याल से कल पाकिस्तान जब खेलेगा तो दो तीन गेमें होगी और हर गेम का एक ही रिजल्ट है
जी जी।
हम इंडिया पाकिस्तान गेम के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा सुन चुके हैं, आज की गेम जो हुई है उसके ऊपर भी लोग सुनेंगे, और کینیڈا اور آئرلینڈ کی جو گیم ہوئی ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھا جائے تو جو ٹیم چلا کے پہلے پانچ اوور پاور چھ اوور کے جو پاور پلے میں زیادہ رن مار جائے گی وہی ٹیم جیتے گی, کیونکہ اس کے بعد بال پرانی ہو رہی ہے اور اس کے بعد نہیں کھیلی جا رہی, ان ایون باؤنس اینڈ آل دیٹ سٹف, ایوری تھنگ کمز ان ٹو پلے. بڑے بڑے پلیئر ہیں جنہوں نے, انڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا, پاکستان کے ساتھ بھی ہوا, پہلے دس اوور میں اچھا رن کر رہے تھے دونوں, ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ انڈیا 200 کے پاس چلے جائے گا, پاکستان چیز کر رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ بڑی اچھی طرح ہو جائے گا ایون نا, ویئر ایز کینیڈا اور آئرلینڈ کی گیم تھوڑی سی ڈفرنٹ رہی تھی کیونکہ آئرلینڈ کو ہم نے پریشر میں پہلے ہی ڈال دیا تھا تو آئرلینڈ نے بعد میں کیا, بٹ آئی گیس دیٹس ایسوسیٹ کرکٹ اور ہمارے پلیئر تھوڑے سے اینڈ میں جھٹکا سا کھا رہے تھے بٹ اسٹل دے کراس دا لائن اینڈ ون دا گیم. کل کی گیم کا کچھ نہیں کہہ سکتے جی, 130-140 از وننگ ٹوٹل.
ٹھیک ہے, اچھا جی, اچھا
کہ 150 از دا نیو 200 ناؤ.
جی بالکل. اچھا سر, یہ جو آئی سی سی تھا یہ کہہ رہا تھا ویکینڈ کے اوپر, کیونکہ بہت ساری کمپلینٹس پچ کے بارے میں گئی تھی کہ اتنے لو سکورنگ یہاں پہ میچز ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, یہی کوشچن ہم نے ویکینڈ پہ ایک اور اپنے ایکسپرٹ سے بھی پوچھا تھا, تو ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کیا کر رہی ہے, اتنا جو ہے وہ تھوڑا انٹرسٹ نہیں شو کر رہی ہے پچ کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے, اور سب سے تو بڑی بات یہ بھی ہے کہ جب یو ایس اے نے یہ سوچا تھا کہ اب کرکٹ ہمارے پاس آنے والی ہے تو انہوں نے کیا, ان کے پاس ریسورسز تو اب ظاہر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہی شاید ہوئیں گے, انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ پچز کیسے بنتی ہیں اور ہم کو کیسے بنانے کی ضرورت ہے.
یعنی آپ کی بات صحیح ہے, یہ جو پچ ہے آلموسٹ یہ جو آسٹریلیا سے آئی تھی اس کے بعد فلوریڈا میں رہی اور اس کے بعد نیو یارک میں آ کے لگائی گئی, یہ پچز جو ہیں سیٹل ہونے میں کم سے کم 8-10 مہینے لگ جاتے ہیں اور یہ کام جو ہے 4-5 مہینے میں ہوا ہے, وچ از اگین کہ بھی اس کا کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ ہونا تھا. بٹ میری یس آئی سی سی ایز اے اسپیکٹیٹر ہم کو لگتا ہے کہ بھی ہائی سکورنگ گیم ہونی چاہیے, بٹ اگر لو سکورنگ, میں کہتا ہوں پچ جیسی بھی ہے کھیلنا تو پلیئروں پہ پڑے گا نا, اس میں بھی پتہ لگتا ہے کہ پلیئر کون کیسے کھیل سکتا ہے. آئی تھنک ایز اے فین میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ کرکٹ ورلڈ کپ میرے کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ جو اچھا جو نروس کو کنٹرول کرے گا, جو زیادہ اپنی کیلبر دکھا سکے گا وہی ٹیم جیت پائے گی. یہ نہیں کہ بھی فلیٹ پچز بنا دو, جی ٹی روڈ پہ سڑکیں, جیسے انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا ہر ٹیم 400-400 رن مار رہی تھی, آئی پی ایل میں 270 لگ رہے تھے, اس سمے اٹس سو انپرڈکٹیبل کہ آخر 150 رن چیز کرنے کے لیے ٹیموں کو مشکل ہو رہی ہے, تو 150 رن جو ٹیم نے پہلے مارے انہوں نے بھی مارے ہیں. سو میرے خیال سے انٹرسٹنگ ورلڈ کپ ہے. یس, آئی سی سی گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے چاہیے تھا کہ بھی پچز اچھی ہوں, بٹ اب تو پچز بن گئی ہیں, مڈل آف دا ٹورنامنٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, اب اس میں کوئی جادو ڈال کے کوئی اس پچ کو فاسٹ تو بنا نہیں سکتے. سو دس از واٹ اٹ از, اینڈ آئی تھنک ٹیموں کو یہ دیکھنا ہے کہ پچز ایسی ہیں تو اس کے حساب سے ہم نے کیسے کھیلنا, ہم نے کیسے اسکور بنانا اور کیسے چیز کرنا, اور اس کی اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے. And I think that's where teams are lacking, کیونکہ دنیا میں ایسی پچز کم ہی ہوتی ہیں جہاں بھی یہ لوگ مین کنٹریز میں کھیلتے ہیں جیسے آسٹریلیا, انگلینڈ, انڈیا, پاکستان, وہاں پر ایسی سلو پچز نہیں ہوتی. سو آئی تھنک ٹیمس ہیو ٹو اڈیپٹ اینڈ ہوپ فلی کہ بھی ہم جب ویسٹ انڈیز میں ٹورنامنٹ موو ہو جاتا ہے وہاں پر پچز جو ہیں تھوڑی سی ہائی اسکورنگ گیمس کے لیے ہوں گی اور کچھ انٹرٹیننگ چوکے چھکے زیادہ لگے.
اچھا سر, دو میچز کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ایک تو جو انڈیا پاکستان کا کل میچ ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ دونوں ٹیمز کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا تھے, کہاں پہ کیا غلط رہا, اور جو کل اب آنے والا میچ ہے پاکستان اور کینیڈا کا تو اس میں اسٹرینتھس اور ویکنیسز جو ہیں وہ کیا رہیں گی.
دیکھیے جی, انڈیا پاکستان کی گیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی بالنگ کو اسٹرینتھ کہتے ہیں اور انہوں نے شو کیا, بٹ جو پاکستان کی ویکنیس ہے بیٹنگ, اس کو بمراہ نے اکیلے نے ایکسپوز کر دیا کہ 4 اوور میں 14 رن دے کے 3 وکٹیں لے لی اگر کسی بالر نے, آئی تھنک دیٹ کل دا مومنٹم, بابر, رضوان جیسے پلیئروں کو آؤٹ کرنا. سو آئی تھنک بیٹنگ, بٹ پاکستان کی بالنگ بہت اچھی ہے اور بالنگ نے گیم میں میرے خیال سے اس سے اچھی اپرچونٹی نہیں دے سکتے تھے اپنے بیٹسمین کو, اور آپ کے پاس بابر اور رضوان جیسے جو پلیئر ہیں دے شوڈ ہیو کیپٹلائز, اینڈ آئی تھنک اسٹریٹجی تھوڑی سی رہا, انہوں نے بھی دیکھا کہ جب انڈیا نے جیسے بیٹنگ کیا تو آپ کو اینالائز کرنا چاہیے کہ کس طرح سے بیٹنگ کی, کیونکہ انڈیا کے بھی 80 پہ 2-3 تھے اور اس کے بعد 119 کے اوپر سارے آؤٹ ہو گئے, اور سیم چیز پاکستان کے ساتھ ہوئی. سو میرے خیال سے تھوڑا سا وہاں پر جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے تھوڑا سا اگر سوچا ہوتا کہ شروع میں ہی اگر چلا کے کھیلتے کہ 6 اوور میں اگر 60-70 کے قریب اچھا پاور پلے نکل جاتا ہے, دین تو گیم ہاتھ سے نکل گئی تھی نا, बट आई थिंक सेम वे बमरा ने दिखाया कि ही इज क्लास अपार्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक नसीम शाह एंड अपना बाकी का पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक, इट वॉज अ बॉलर्स गेम, बैट्समैन तो दोनों तरफ से किसी ने भी कुछ नहीं किया. आई थिंक पाकिस्तान फील्डेड पोअरली, अगर थोड़ा सा और अच्छा फील्डिंग करते तो 119 भी नहीं बनते, कि भी कैचेस के पास पहुंचना नहीं, कैचेस के पास पहुंच के उनको कैच भी करना आता है. सो आई थिंक फील्डिंग में जो होता है कि भी फील्डिंग में करके इंडिया को और जल्दी आउट कर सकते थे, और दिस वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू विन द गेम. आई थिंक इंडिया ने पूरा मौका दिया, एंड आई थिंक बुमराह जो है वो ही जस्ट ऑफ द गेम बैक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, दैट्स माय जिस्ट ऑफ द गेम. बाकी ये है कि भी टफ लक, दिस वॉज अ अपॉर्चुनिटी दैट यू नो एनी टीम नीड्स. इंडिया की बैटिंग जो है इतनी बुरी तरह कलेप्स हो जाएगी, ये नहीं सोचा था. बट देन अगेन द पिचेस को ब्लेम कर देते हैं बैट्समैन, वहां पर जो 30-40 रन मार रहे हैं वो भी बैट्समैन ही है जिन्होंने रन मारे हैं. सो आई थिंक पीपल हैव टू पुट अप देयर हेड्स डाउन एंड ग्राइंड इट आउट. आज की गेम जो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की हुई है वो भी बड़ी लो स्कोरिंग थी, वो तो इंडिया से भी कम रन मारे थे साउथ अफ्रीका ने और फिर डिफेंड कर गए. और जहां तक कल की गेम है मेरे ख्याल से पाकिस्तान कैनेडा की, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर इंडिया कैनेडा, की भी अपना हम पाकिस्तान के साथ खेलने का मौका मिल रहा है. एंड वी विल बी सीइंग कि हमारे बैट्समैन जो है वो जो बॉलिंग अटैक है हमारा ट्रू टेस्ट होगा कल, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से हम ऐसी बॉलिंग अटैक के सामने यूएस और आयरलैंड दोनों के पास वो बॉलिंग अटैक नहीं है जो हमारी टीम ने अभी तक फेस किया है. सो होपफुली कि भी कल हमारे लड़के जो है पहली दो गेमें खेल के कुछ ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हों, और विकेट वहां पर न्यूयॉर्क में पिछले 3-4 दिन से हैं, तो होपफुली दे हैव अंडरस्टूड एंड स्ट्रेटेजाइज इन अ वे कि भी किस तरह से पाकिस्तान की पेस अटैक को फेस किया जाए और किस तरह से इस गेम को अप्रोच किया जाए.
राजपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग बैक अगेन. जिस तरह आपने जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे हमारे देखने और सुनने वालों को बता दूं कि जसप्रीत बुमराह बिकम अ फर्स्ट पेसर फ्रॉम इंडिया, या फर्स्ट बॉलर या फर्स्ट खिलाड़ी जिन्होंने बैक टू बैक जो है T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच लिए, इसी वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ और इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ. और जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है तो जसप्रीत बुमराह मोस्ट आईसीसी T20 इवेंट ICC मैचेस में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच लेने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं. नंबर 5 के साथ जो है जसप्रीत बुमराह वो उस लिस्ट पे हैं. अच्छा सर, कल की ही बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर. आपको कहां लगता है कि पाकिस्तान के जो आखिरी के 10 ओवर थे वहां पाकिस्तान ने किस तरह खेला, क्या आपको लगता है कि विकनेस पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल उसको इतना इजी ले लिया? देखें जब इनिंग शुरू की तो 6 तकरीबन देखा जाए तो 6 का जो है रिक्वायर्ड रन रेट था, फिर आप आखिरी ओवर में आके आप 18, एक ओवर में आपको 18 रन चाहिए, तो 10 ओवर के बाद पाकिस्तान ने उसको इजी ले लिया या थोड़ा सा वो प्रेशर में आ गए या उन्होंने डॉट बॉल ज्यादा कर ली, तो आप क्या समझते हैं कि आखिरी के जो 10 ओवर थे पाकिस्तानी बैटिंग के उसको आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तानी एज अ फैन?
आई थिंक आप अगर बोलो तो मैं एज एनालिस्ट उसको गेम जो क्लोजली देखूंगा तो उसमें देखूंगा पहले 10 ओवर में बॉल जो है हार्ड होती है, रन मारने इजी है इस पिच के ऊपर.
जी जी.
और दूसरे लास्ट के जो 10 ओवर में तब तक बॉल थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है और उसके ऊपर रन मारने भी मुश्किल हो रहे थे. मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा किया था, बट ये है कि उसके बाद अच्छी आई थिंक दे वर ऑन पेस टू गेट द टोटल, और फिर वही एक बड़ी गेम का प्रेशर, 2-3 विकेटें लगातार, जब बुमराह ने आके मेरे ख्याल से इट वॉज नॉट बुमराह आई थिंक अक्षर पटेल ने जब विकेट निकाली है, आई थिंक अक्षर पटेल ने जो वो एक विकेट निकाली है उसके बाद फिर ऐसा जैसे ना एक किस्म का पैनिक सा आ गया था कि भाई देन सिंपल गेम थी, रन अ बॉल गेम थी ये. आई थिंक रन अ बॉल में अगर आप मैं कहता हूं कि रिजवान और जिस तरह से खेल रहे थे दिस वॉज अ वेरी इजी विक्ट्री. हम तो बाहर बैठ गए थे कि भाई गेम हार चुके हैं कि भाई इंडिया वाले ये तो लास्ट ओवर में 18 रन तक पहुंचने वाली, तो आप कह लो कि आई थिंक देन अगेन जब वहां पर रन चाहिए और टीम प्रेशर में है तो बुमराह जैसे बॉलर ने जो किया एंड आई थिंक आई कैन से मोर अबाउट बुमराह व्हाट जसप्रीत हैज डन, क्योंकि अखीरले मेरे ख्याल से दो ओवर में उसने सिर्फ चार रन दिए हैं और दो विकेट निकाले, क्योंकि पहले दो ओवर में उन्होंने 9 रन दे दिए थे और अखीरले दो ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए, 4 या 5 रन दिए क्योंकि टोटल 14 रन दिए और उनको खेल नहीं पाए। और वो एक एक डॉट का जो है प्रेशर जब बढ़ना शुरू हो जाता है तब रैश शॉट्स लगते हैं, कैचेस गए, प्लेयर आउट हुए प्रेशर में आके, एंड आई थिंक वहां पर गेम लूज कर दी। और 18 रन पे पहुंच के भी आई मीन आई फील बैट के लिए मशीन जैसे बैट्स दबे ही ऑलमोस्ट मेरे को तो लग रहा था कि भी शायद जाएगा सुपर ओवर में, बट थिंग्स वर नॉट मेंट टू बी। आई थिंक थोड़ा सा इजी शुरू में ले लिया जब रन बन रहे थे, बट आई थिंक बाद में वही जो हम बार बार बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की गेम के अंदर कि जो टीम प्रेशर अच्छा ले जाएगी, आई थिंक आफ्टर दैट पाकिस्तानी बैट्समैन जस्ट कुड नॉट हैंडल द प्रेशर, एंड वहां पर जब एक डॉट होती है उसका प्रेशर जो है दूसरी डॉट पे जाता है एंड दैट्स व्हाट कंटिन्यूड एंड दे लॉस्ट विकेट्स एंड आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन कि वे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए इतनी बड़ी गेम का।
थैंक यू बाजवा साहब, आमिर बात कह रहा हूँ। मेरा सवाल अब जाहिर कल पे हम बात करते हैं मैच के लिए पाकिस्तान और कनाडा के, उस पर हम जाहिर साद बिन जफर एज ए कैनेडियन भी जाहिर हमारी टीम वहां खेल रही है और एज अ पाकिस्तानी भी जो है मैं कहूँ तो वो भी टीम हमारी खेल रही है, तो आप मुझे बताएं कि हम एज एन कैनेडियन टीम की बात करता हूँ, जाहिर उन्होंने अभी इंडिया के साथ मैच देख लिया, साद बिन जफर माशाल्लाह इज वेरी टैलेंटेड मैन, पूरी टीम ही माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है हमारी कनाडा की, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी हो रहा है पिच के हिसाब से हम अपनी कहां स्ट्रेंथ को यूज करें अगर हम टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करें या फील्ड फर्स्ट करें अगर हम टॉस जीत जाते
हैं? आई थिंक कनाडा को कल की गेम में अगर हम टॉस जीते तो हम इस समय बैटिंग ही करेंगे, क्योंकि बैटिंग में हमारे पे प्रेशर नहीं होगा, एक टारगेट सेट करने का प्रेशर नहीं होता, टारगेट चेस करने का प्रेशर नहीं होता, और दूसरा है कि भी अगर जब आप टीम के साथ पहली बार खेल रहे हो तो आप टारगेट सेट कर देते हो और आपका उसको उसके बाद आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो उसको डिफेंड करने का भी। और मेरे ख्याल से कनाडा को कल जिस तरह से हमारे बैट्समैन है कि जो ऊपर से चला के स्पेशली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भी कल की गेम में एरन जॉनसन जो है हमारे जो उनको पेस बहुत पसंद है, आई होप कि कल वो अपने अभी तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया है, इवन दो ही हैज गिवन अस डिसेंट ओपनिंग 15-20 रन तक कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से कल एरन जॉनसन शुड बी द वन हु शुड बी लुकिंग एट, और हमारे को थोड़ा सा कह लो कि ऊपर ही पहले 6-7 ओवर जो पावर प्ले के हैं उनके अंदर ही पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उनकी पेस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वंस इट कम्स डाउन टू स्लो बॉलिंग एंड स्पिनर्स आई थिंक देन द गेम चेंजेस टोटली, बट पहले 6 ओवर में हमारे को टॉस जीत के बैटिंग लेनी चाहिए और पहले 6 ओवर में हमारे को पावर प्ले शुड बी द मोस्ट क्रिटिकल थिंग हमारे लिए, और देन अगेन यू नो वंस यू सेट अ टारगेट एंड पाकिस्तान के दिमाग में भी होगा कि कल हमसे टारगेट चेज नहीं यहां पर चेज नहीं हुआ और हमारे पास ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमने आयरलैंड को टारगेट सेट करके चेज करने नहीं दिया, सो फ्रॉम दैट एंगल मेरे ख्याल से कल कनाडा को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए।
और आप क्या कहते हैं, टीम कॉम्बिनेशन भी सेम रखना चाहिए या आपको लगता है कि यहाँ या पाकिस्तान टीम को देखते हुए यहाँ की सिचुएशन देखते हुए?
आई थिंक टीम कॉम्बिनेशन हमारा सेम होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक मैं जो कहूंगा कि भी थोड़ा सा क्योंकि सिंस यू आर गोइंग एग्रेसिवली इन द पावर प्ले, सो मेरे ख्याल से एक और अटैकिंग बैट्समैन बैटिंग स्ट्रेंथ जो है हमारी मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर में एक दो बैटिंग चेंज, बॉलिंग अटैक हमारा सही था, जर्मी गॉर्डन, डिलन एंड सना एंड आफ्टर दैट जुनेद सिद्दीकी एंड साद बिन जफर, आई थिंक हमारे पांच जो मेन बॉलर हैं बॉलर चेंज नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक बैटिंग में एक थोड़ा सा अटैकिंग बैट्समैन माई ओपिनियन वुड बी परगट सिंह की जगह रवि या रायन पठान, दोनों में से एक आदमी टीम में आना चाहिए बिकॉज दे आर अटैकिंग बैट्समैन,
पावर प्ले को जो है ज्यादा कैश करा सके, पावर प्ले में अपना रोल अच्छा कर सके।
जी मेरे ख्याल से इसीलिए हमको थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में परगट इज ए मोर टेक्निकल बैट्समैन, सो मेरे ख्याल से अगर हम पावर प्ले में राय जो कि ओपन भी करते रहे कनाडा के लिए वन डाउन टू डाउन में उनको लेके आते हैं प्ले अग्रेसिव बैटिंग, आई थिंक दैट्स द ओनली चेंज आई वुड से, अदरवाइज आई थिंक टीम कॉम्पोजिशन इस समय जो आयरलैंड के खिलाफ खेला था उसमें से एक आधा प्लेयर छोड़ के बाकी सारी मेरे ख्याल से बॉलिंग अटैक।
अच्छा सर मेरी बात सुने, अगर आपकी टीम ने कल पाकिस्तान को हरा दिया है जी, जो हमारी टीम है कनाडा की, अगर उन्होंने हरा दिया, मुझे बताएं आप हमारे साथ पार्टी करने यहाँ पे आएंगे?
जी जरूर आएंगे।
770 के स्टूडियो में पार्टी होनी चाहिए सर, अगर कनाडा की टीम ने कल
पाकिस्तान
को हराया और सुपर पहुंचे हैं।
तो मेरी एक्चुअली परसों फ्लाइट है, मैं निकले जा रहा हूँ।
अच्छा भाई साहब, आप जो है ना, आप हमें गोली देके गायब हो जाते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, इस दफा हमने आपको करने देना, आप चाहे जाएं चाहे आप ट्रेवल करें जो करें, आपने वापस आना है हमारे साथ पार्टी करने।
मैं वही कह रहा हूँ कि मैं फ्लोरिडा जा रहा हूँ, फ्लोरिडा के बाद वहां से सीधा टोरंटो पहुंचूंगा, फिर हम सुपर एट में।
क्या बात है,
हाँ वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर इंडिया के साथ जो मैच है सर, उसके आपके दिल में, आपके मन में ख्वाहिश क्या है और हो क्या सकता है?
देखिए मैं अपने 20 साल हो गए हैं मेरे को क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर इन्वॉल्व होके खेल, उससे पहले खेलता रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम था कि मैं एक दिन कनाडा और इंडिया को गेम खेलते हुए देखूं, और कह लो कि भी ऐसा है कि भी उस समय तो हम कनाडा के अंदर एज ए फैन ही थे। अब तो इस समय क्रिकेट कनाडा के साथ इन्वॉल्व भी हैं, सो ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि भी एक दिन वहां पर हम खेले, और मेरी जो है कि जो गेम है वो क्या, यस आई एम इंडियन डिसेंट, बट मेरे पास पासपोर्ट और मैं जिस कंट्री में रहता हूँ, मैं तो इस समय चाहूंगा कि भी फ्लोरिडा में मैं चाहता हूँ, और मैं पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, और हम सब कनाडा की जर्सियां पहन के कनाडा को चेयर करने जा रहे हैं, इंडिया को नहीं।
अच्छा तो आप चाहते हैं कि जाहिर है कि कनाडा की टीम जीते?
डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर हमारा कोई चांस है नहीं है, मैं तो कनाडा की टीम को ही जिताने के लिए जा रहा हूँ। इंडिया की टीम यस ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास इंडिया ही आ जाती है जब कनाडा नहीं है, बट एज लॉन्ग एज कनाडा इज प्लेइंग आई एम गोना बी सपोर्टिंग, एंड इवन माई फैमिली के भी सारे जाने जा ही इसीलिए जा रहे हैं कि भी हमको एक मौका मिल रहा है कि भी कनाडा और इंडिया का, देखिए उसमें ये होगा कि अगर हम जीत गए तो भी खुशी है, जो हार गए तब भी खुशी है, तो कहेंगे चलो इंडिया जीत गया, बट ये कि एट द एंड ऑफ द डे आई वांट कनाडा टू विन द गेम, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम।
आप भी टिपिकल जो है वो मेपल लीफ फैन है जो 1968 में कोई जीते थे आखिरी मैच, तो आप भी उस तरह के एंथुजियास्ट हैं जी, आप कह रहे हैं बस हमने सपोर्ट जरूर करना है अपनी टीम।
सर हमारी भी कल यही फीलिंग है जो आपकी होगी, हमारी भी यही फीलिंग है।
दूर से हम आए हुए हैं, बिल्कुल इस कंट्री को हमने सबने अपना घर बनाया हुआ है, सो ऑब्वियसली थोड़ी दैट लॉयल्टी शुड बी देयर फॉर श्योर।
मेरे पास रेड और ग्रीन दोनों शर्ट्स हैं सर।
तो इसने एक बाजू में रेड पहना होगा और एक बाजू में कल ग्रीन पहना होगा, आप देखना ये कैसा ये जो रंग बिरंगी बना बैठा होगा।
देखो जी आपको टी शर्ट जो है वो हरी पहननी चाहिए और टोपी जो है वो लाल पहननी चाहिए, दिमाग से आप
द गुड वन मैन, ये आप अच्छा किया, यस यू आर राइट।
अच्छा अच्छा
अच्छा बजवा साहब, क्रिकेट में 7 का जो वर्ड होता है या नंबर होता है वो किसी बॉलर के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी कि नो बॉल पे छक्का पड़ना। कल पहली इनिंग के बाद मैं 7 का बताता हूँ कि आज फन क्या हुआ, फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। सूर्य कुमार यादव ने 7 रन बनाए, हार्दिक पांडे आए 7वें नंबर पर और 7 रन बनाए, सिराज ने स्कोर किया 7, उन्होंने 7 गेंदे फेस की, कोहली ने 7 मिनट बैटिंग की, दुबे ने भी 7 मिनट बैटिंग की, सिराज ने भी 7 मिनट जो है बैटिंग की,
उन्होंने
1 ओवर कराया और उन्होंने 7 रन दिए, उनकी इकोनॉमी जो 7 रन थी, हारिस राव की इकोनॉमी जो है वो 7 रन की थी, तो जो टोटल एक्स्ट्रा हुए यानी कि इंडिया की बैटिंग के बाद वो भी 7 थे, तो देखिए 7 से कितना कामयाब।
क्या बात है, क्या बात है जीशान।
अच्छा एक और चीज, एसोसिएट नेशन ने जो पहली दफा इंडिया पाकिस्तान का मैच जो करवाया था वो जैसे 1998 में था बांग्लादेश में, उसको आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहा करते थे, अब जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में तब्दील हो गई। उस वक्त जो अटेंडेंस थी क्राउड की वो 40,000 थी, उस 40,000 के बाद 1998 के बाद 2024 में जो कल मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें जो अटेंडेंस थी वो थी 34,028। तो भाई साहब बताएं जो अटेंडेंस रही न्यूयॉर्क में जो लोग आए देखने के लिए, कैसा आपको लगा कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में भी जो है 34,000 के लगभग जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं ये लोग?
यानी देखिए जी, इंडिया पाकिस्तान की गेम जो है इतनी मार्की गेम होती है कि भी आप कहीं भी लगा लीजिए, आप पीपल आर गोना गो एंड वॉच इट. बट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारी जो नॉर्थ अमेरिका की जो अटेंडेंस स्टेडियम वो वेस्ट इंडीज से ज्यादा है इस समय. अगर आप वैसे भी देख रहे होंगे, आपने अगर देखा होगा कि नेपाल और नीदरलैंड्स की गेम जो डैलस में हुई वो ऑलमोस्ट 7-8 हजार का स्टेडियम है, इतना बड़ा स्टेडियम नहीं है, 10 हजार के नीचे का है, बट वो सोल्ड आउट. बट नेपाल नीदरलैंड गेम एंड वैसे भी आप देखेंगे कि भी कल पाकिस्तान और कनाडा की गेम है, आपको वहां भी फैंस बेशुमार मिलेंगे कि भी, क्योंकि कैनेडियंस एंड अमेरिकन्स जाके ये स्टेडियम्स फिल कर रहे हैं क्योंकि कनाडा के पास होने की वजह से. सो आई थिंक फ्रॉम अटेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मेरे ख्याल से आईसीसी ने टिकट थोड़ी सी महंगी लगा कर रखी थी इस बार, बट ये है कि भी इंडिया पाकिस्तान की गेम के लिए ये स्टेडियम मेकशिफ्ट स्टेडियम था, 35,000 से ऊपर का स्टेडियम बनाना भी बड़ी मुश्किल थी. मेरे ख्याल से अगर 50 भी कर देते तो 50 भी भर जाता क्योंकि देयर वर पीपल हु वांटेड टू गो एंड वॉच दिस गेम. एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कल आईसीसी तो पूरी सारी आईसीसी और पूरे वर्ल्ड का ये जो मार्केटिंग टीम है उनका जोर लगा होगा कि किसी तरह कल पाकिस्तान कनाडा से हारे ना, क्योंकि जब तक पाकिस्तान टूर्नामेंट में है इंडिया टूर्नामेंट में है, बेटर फॉर एडवर्टाइजिंग.
सर आप क्या बात कर रहे हो, यानी लोग कंस्पायर कर रहे हैं पाकिस्तान को छुपाने के लिए.
तो कल की गेम में चाहेंगे कि होपफुली पाकिस्तान इंडिया की एक गेम और हो भी आगे जाके क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल या कहीं भी, विच इज गुड फॉर रेवेन्यू पर्सपेक्टिव. मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में जो जैसे पाकिस्तान को यूएस ने हरा दिया, आयरलैंड को कनाडा ने हरा दिया, दो फुल मेंबर्स को जब एसोसिएट कंट्रियां जो भी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रियां हरा रही हैं, तो हमारे रीजन की स्ट्रेंथ और हमारे रीजन के क्रिकेट की वैल्यू जो है वो बढ़ती है और पता लगता है कि भी एसोसिएट कंट्रीज में भी क्रिकेट जो अच्छा हो रहा है. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस कि हमारे को टाइम और यानी कि आप कह सकते हैं कि भी हमारे को थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, बट या वी आर ऑन द राइट ट्रैक एज फार एज द रीजन आर कंसर्न, क्योंकि अमेरिका की टीम से भी मैं बहुत खुश हूं कि बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं इस समय वो लोग.
ये सारे इतने जबरदस्त लड़के हैं उसके अंदर खेलने वाले, और जो है उनकी क्या जबरदस्त टीम है, और वो जो है वो प्लेयर्स दे आर वेरी साउंड. यानी हमें लग रहा था कि या दुनिया को शायद लग रहा था कि जी नई सी टीम है, लड़के तो कोई होंगे नहीं, बट दे रियली शोड देयर प्रोवेस कि वो कितना गेम के अंदर जो है दे आर रियली, वो जिसको कहते हैं ना हमारे पंजाबी में पक्का खिलाड़ी, और बिल्कुल पक्के खिलाड़ी हैं वो.
जी हाँ जी, दे हैव सम गुड प्लेयर्स और अच्छा सिस्टम भी उन्होंने बनाया हुआ है. एक पर ये वर्ल्ड कप लोग बार बार मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ कि भाई अमेरिकन्स कहाँ है, कनेडियंस कहाँ है, भाई हम उनको शोकेस कर रहे हैं गेम. एक बार मेन स्ट्रीम में आई तो हम वहां के यहाँ के गोरों को भी लिखते आएंगे, घबराओ मत. Once again gets popular in this region.
जी सर, आपने देखा ही होगा किस तरह से अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया है, तो बस इस तरह की टीम हमारी कनाडा की भी बनेगी इंशाल्लाह.
डेफिनेटली.
अच्छा बाजवा जी, G20 की मैं बात करता हूँ, एक और फन फैक्ट मैं आपने देखने और सुनने वालों को बता दूं कि जो कल मैच हुआ यूएस में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, यूएस जो है 12th कंट्री बन गई जिसने पाकिस्तान और इंडिया का मैच होस्ट किया. वो जो पहली दफा इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होस्ट किया था वो इंडिया में हुआ था 1952, पाकिस्तान में 1955, यूएई में 1984, ऑस्ट्रेलिया में 1985, बांग्लादेश में 1988, सिंगापुर में 1996, कनाडा में 1996, सहारा कप जो हुआ करता था श्रीलंका में 1997, इंग्लैंड में 1999 और साउथ अफ्रीका में 2003 और नेदरलैंड्स में 2004. 2004 के बाद 2024 में यानी 20 साल के बाद जो है यूएस ने होस्ट किया है इंडिया और पाकिस्तान के मैच को.
क्या बात है,
थोड़ी सी रिकॉर्ड भी जो है आज.
क्या बात है ईशान, आज लगता है तुम पढ़ाई करके आए हो, तुम्हारी शक्ल से भी लग रहा है तुम्हारे बच्चे बने हुए थे.
भाई साहब बात करते हैं G20 कनाडा की, थोड़ी सी ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि 25 जुलाई से लेकर August 11 तक जो है G20 का सीजन 4 खेला जाएगा. अच्छा एक थोड़ी सी मैं रिजर्वेशन इसलिए रखता हूँ कि हमारा जो ड्राफ्ट होते हैं ऑफिशियली जो ड्राफ्ट की अनाउंसमेंट होती है जो दूसरी लीग्स करते हैं ऑफिशियली उनका मीडिया उसमें इन्वॉल्व होता है, प्रेस उसमें इन्वॉल्व होता है, वो बाकायदा ब्रॉडकास्ट होता है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर. कनाडा में इस तरह का नहीं होता, उसकी वजूहत क्या है और इस दफा होगा या नहीं?
देखिए पता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्राफ्ट आप कह रहे हैं कि जो बाकी टीमें करती हैं, हमारे टीम्स ओनर्स हैं, ये हमने एक बार ही किया था जब ड्राफ्ट जो है सेकंड सीजन का बॉम्बे में हुआ था ऑनलाइन, जिससे कि भी हमने सबको वहां पर, बट आई थिंक इस साल फिर वही हम उसी कैच 22 में है कि वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, यहां पर एमएलसी चल रहा है और हमारी सैंक्शन डेट्स जो है अभी तक डामाडोल में घूम रही थी. सो फॉर दीज थिंग्स आई थिंक अगेन यू विल बी यू नो इस साल भी आप डिसअपॉइंटेड ही होंगे कि ड्राफ्ट जो है वो उसी तरह से होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था. बट आई थिंक इफ थिंग्स गो द वे दे आर गोइंग राइट नाउ आई थिंक इन फ्यूचर ये टीम ओनर्स जो है एक रूम में बैठ के लाइव टेलीकास्ट विद मीडिया एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज द एंड गेम, दैट इज द प्लान.
Yeah.
But I think right now, with the time frame that we have, I don't think so will be possible this year.
सही. अच्छा जो जो टाइमिंग वीविंग है वो तो हम लोग अगर एक दिन में दो मैचेस होते हैं तो वो हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज में मैचेस देखे जा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मैच होता है वो थोड़ा सा व्यूवरशिप के हवाले से वो हमें हर्ट करता है. जिस तरह से ड्राफ्ट की बात की, ड्राफ्ट जो लास्ट टाइम जो मैंने देखा, मैं G20 के फेसबुक पे जो है मैं कौन सी उसको फॉलो कर रहा था कौन सी टीम ने किस खिलाड़ी को लिया, तो वो थोड़ा सा एक मजा जो है वो एक्साइटमेंट नहीं देती. तो मैं उस सेंस में ही आपसे कहा बात पूछना चाह रहा था कि अगर हम ड्राफ्ट को ज्यादा लें या उसको शोषा करें उसकी हाइप क्रिएट करें तो ये G20 के लिए जो है एक अच्छा सिंबल होगा, एक अच्छा साइन होगा. अच्छा इस बार आप पिछली दफा जो हुआ था वो 19 दिन का था और इस दफा भी जो है तक लगभग 15 दिन का है, तो शॉर्टर G20 जो है शॉर्टर होता जा रहा है बनिस्बत का इसको एक्सपेंड होना चाहिए. मुझे पता है कि अब वो एमसीएल भी वहां पे होगी, कैरिबियन लीग भी शुरू होने वाली है, फिर हमारा जो अगस्त में टाइमिंग होती है सनसेट बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा.
जी देखिए इवेंचुअली हमारी एमएलसी के साथ भी बातचीत चल रही है कि एमएलसी की और G20 की जो बात है कि भी किस तरह से स्केड्यूल सेट किया जाए सो दैट हम आपस में क्लैश ना कर सकें. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल शॉर्टर वर्जन होने का रीजन ये भी है कि भी हमारी कनाडा की सीरीज जो है नीदरलैंड के साथ राइट आफ्टर द G20 है, सो हमारे पास टाइम बहुत कम है बीच में और वर्ल्ड कप इस बार यहां नॉर्थ अमेरिका में होने की वजह से एमएलसी को भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ा, हमको भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ा, नहीं तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम वोंट बी देयर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वर्ल्ड कप आई थिंक इज इन साउथ अफ्रीका T20 का दो साल के बाद. तो जो टाइम फ्रेम है वो हमारे जून जुलाई के महीनों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में सदर्न हेमिस्फीयर की साइड चले जाते हैं आप इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका जो इस साइड की कंट्री है, ये फिर आपको अक्टूबर नवंबर में जाके वर्ल्ड कप होता है. सो इसलिए इस बार जो समर है हमारा वो कुछ ज्यादा ही क्रंच हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप के आने से एक महीना हमारे से कैलेंडर में से एकदम खत्म हो गया और हमारा जो ओडीआई साइकिल है उसके जो मैचेस हैं वो अगस्त के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे नीदरलैंड के साथ स्कॉटलैंड के साथ. सो इसलिए हमारे को ये थोड़ा सा करना पड़ा बीच में, इन्होंने जो गेमें उतनी होंगी जितनी लास्ट ईयर थी बट आई थिंक दिन कम कर दिया उन्होंने बिकॉज बीच में से एक आधा रेस्ट जो है निकाल दिया, बट अदर देन दैट आई थिंक नेक्स्ट ईयर एमएलसी एंड G20 आर ऑलरेडी इन टॉक्स की भी किस तरह से इसको किस तरह से किया जाए कि भी एक तो लॉन्गर वर्जन जितना करना चाहते हैं वो कर सकें और दूसरा है कि आप इसमें क्लैश ना करें. इस बार भी मेरे ख्याल से एमएलसी के साथ 2-3 दिन का क्लैश है, बट इवेंचुअली दे वांट टू हैव अ सेपरेट विंडो सो दैट द प्लेयर्स दैट कम फॉर एमएलसी कैन बी ड्राफ्टेड इन G20 एंड वाइस वर्सा.
सही. चलें बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट पे बात करते हैं G20 पे बात करते हैं और आपने जो ओपिनियन देते हैं हमें मजा आता है और दिल को अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल खुले अल्फाजों में और अच्छे तरीके से हमसे बात करते हैं.
नहीं, नहीं एक एक दफा जाने से पहले भाई साहब से पूछे, भाई साहब दिल क्या कह रहे हैं, क्या गवाही दे रहे हैं कल के लिए?
कल तो कनाडा जीत रहा
है. यही मैं आपको यही सुनना चाह रही थी मैं आपसे.
कल तो कनाडा जीत रहा है.
वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है
भाई साहब. फिर जो है आपसे नेक्स्ट वीक बात होगी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आने के लिए.
थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू
सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.
जी सर जी,
हाँ जी, ये थे हमारे बाजवा साहब। अब कौन से बाजवा साहब हैं ये तो आपने खुद ही अंदाजा लगाना है।
हाँ
जी
जी, अब ऐसा कर लेते हैं कि
एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं,
टॉप ऑफ दी अवर का वक्त हुआ, टॉप ऑफ दी अवर का ब्रेक ले लें और उसके बाद अब हमारी जो जो वो स्पेशल वाली सारी लाइन है ना
वो खोल
लें और नंबर अनाउंस कर दें 416-620-1778 पर जो है वो आप हम सबसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हल्का फुल्का अपना भड़ास भी निकाल सकते हैं।
जी बिल्कुल, 416-620-1778 लेते हैं टॉप ऑफ द ब्रेक, फिर आते हैं वापस।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktrucklube.com।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
मुस्लिम वेलफेयर कनाडा दुनिया में मुस्तहिक लोगों की मदद में पेश पेश। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के साथ कुर्बानी कीजिए या कुर्बानी में अपना हिस्सा शामिल करें। डोनेशन या मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 1-866-754-3111 1-866-754-3111 या विजिट करें mwcanada.org।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872।
और हर थर्सडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
एना सोना कर लिया हूँ, अपलायंसेज भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अपलायंसेज मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेज थे, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, फिर टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेज थे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेज 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828-905-450-2828।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन, पायल ज्वेलर्स। कॉल करें 9057907879, दैट इज 9057907879।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ, ਮਿੱਟੀ, ਗਮਲੇ ਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਤਨੂਰ, ਮੰਜਾ ਤੇ ਢੋਲ, ਫੋਲਡਿੰਗ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12050 Airport Road, ਕੈਲੇਡਨ, 9058409000, 9058409000, ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ।
कहते हैं कि माया को खींचे माया करकर लंबे हाथ। हैरी सॉन्ड मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं इनके। आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन्ड जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरी सॉन्ड नाउ।